आज है 10 जनवरी दिन बुधवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। केंद्र सरकार ने सिंगल ब्रांड में विदेशी कंपनियों को 100% मालिकाने का हक दिया। मार्क्सवादी पार्टी और स्वदेशी जागरण मंच ने त्योरियां चढ़ाई।
ये भारत ही नहीं विश्व में ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है। FDI से भारत का विकास निश्चित रूप से नहीं होगा।
झारखंड में अधिकारियों ने कहा खुद को फर्जी मामलों में फंसा कर जेल गए दो लोग लालू यादव से नहीं मिल पाएंगे।
स्वाभाविक है कि वहाँ पर किसी कीमत पर वो नहीं जाएगा और किसी भी दूसरे व्यक्ति को वहाँ जाने से सख्त ये बनाई है।
समझेंगे ईरान के शहरों में सरकार विरोधी प्रदर्शन क्यों हुए।
लोगों को उम्मीद थी कि सैंक्शन हटेंगे तो नौकरियां मिलेंगी, हालात और बेहतर होंगे, लेकिन हुआ ये कि और हालात बिगड़ गए।
पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार मानसी दास से। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI को लेकर कई अहम फैसले किए गए हैं। विमानन कंपनी, रिटेल कारोबार और कंस्ट्रक्शन सहित कई क्षेत्रों में FDI नियमों में बड़ी ढील दी गई है, जिसके बाद अब सिंगल ब्रांड रिटेल में ऑटोमेटिक रूट से 100% FDI आ सकेगी और कंस्ट्रक्शन में भी 100% FDI की अनुमति दे दी गई है। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एयर इंडिया में विदेशी एयरलाइंस को 49% की हिस्सेदारी खरीदने के प्रावधान वाले प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान के कसूर शहर में मंगलवार को लापता होने वाली 8 साल की बच्ची जैनब की लाश उनके घर से 2 किलोमीटर दूर कूड़े के ढेर में मिली है। पुलिस का कहना है कि बच्ची का बलात्कार करने के बाद उनका कत्ल किया गया है। घटना के बाद से ही कसूर में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। प्रदर्शनों में 2 लोगों की मौत भी हुई है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बच्चियों को अगवा करने, उनके साथ बलात्कार करने और उनका कत्ल करने वालों के खिलाफ प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। इधर पुलिस का कहना है कि अभियुक्त का पता लगाने के लिए 200 से ज्यादा अफसरों के दल लगाए गए हैं। म्यांमार में सरकारी अभियोजन पक्ष ने रॉयटर्स समाचार एजेंसी के 2 संवाददाताओं पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। इसके तहत अधिकतम 14 साल की सजा दी जा सकती है। वा लोन और क्वासो ऊ ने अदालत के बाहर पत्रकारों को बताया कि वो केवल सच्चाई खोजने की कोशिश कर रहे थे। बीते महीने दोनों एक रेस्तरां में खाना खाकर लौट रहे थे जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों पर रखाइन प्रांत में हुई हिंसा और मुसलमान अल्पसंख्यक रोहिंग्या की मौत के सिलसिले में जानकारी इकट्ठा करने का आरोप है। अदालत के बाहर वालून की पत्नी पान आई मोन ने कहा, वालोन ने कहा है कि वो नियम कानून का पालन करते हैं और अपने देश को धोखा देने के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं बिल्कुल चिंता ना करूं क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने अपनी सरकार के लिए वोट दिया है और उन्हें यकीन है कि उन्हें जल्द छोड़ दिया जाएगा। मुझे भी उनके यकीन पर पूरा यकीन है। म्यांमार में अदालत के बाहर वालून की पत्नी पान आई मोन के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अमेरिका का एक खोजी जहाज भारतीय महासागर में मलेशियाई एयरलाइंस MH370 की तलाश का काम शुरू करने वाला है। ये विमान आज से 4 साल पहले लापता हो गया था। विमान में कुल 239 यात्री थे। बीते साल लापता विमान की खोज को बंद कर दिया गया था। अमरीकी कंपनी ओशियन इन्फिनिटी का कहना है कि वो 8 छोटी-छोटी पनडुब्बियों की मदद से समुद्र तल के एक बड़े इलाके को जल्द खोज सकती है। मलेशिया के परिवहन मंत्री लियो टियोंग लाई ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि इसका खर्च मलेशियाई सरकार देगी बशर्ते विमान का मलबा मिले।
Based on the agreement, Ocean Infinity will undertake search operation to locate flight MH370.
जो समझौता हुआ है उसके तहत ओशियन इन्फिनिटी नाम की कंपनी समुद्र के दक्षिणी हिस्से में 25,000 वर्ग किलोमीटर में लापता विमान को खोजने की कोशिश करेगी और इसका आधार ये है कि कुछ ना मिला तो इसके लिए पेमेंट नहीं की जाएगी, यानी कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे। जरूरी है कि वो कंपनी मलबा ढूंढे, उसका कोई टुकड़ा या फिर उसका रिकॉर्डर ढूंढे। मलेशिया के परिवहन मंत्री लियो टियोंग लाई के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। ईरान में न्यायपालिका के प्रमुख ने देश के सभी जजों को नशीले पदार्थों से संबंधित मामलों में मौत की सजा पाए लोगों की सजा को फिलहाल रोकने का आदेश दिया है। BBC समाचार।
ये BBC हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। मैं हूं राजेश जोशी। आम बजट से पहले केंद्र सरकार ने सिंगल ब्रांड और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में विदेशी कंपनियों को भारत में 100% मालिकाना देने का ऐलान कर दिया है। अब तक सिंगल ब्रांड विदेशी कंपनियों को 49% तक सीधे निवेश करने की छूट थी, पर सरकार की मंजूरी से वो 100% निवेश कर सकती हैं, पर अब सरकारी अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंत्रिमंडल ने एयर इंडिया के निजीकरण को आसान करने के लिए उसमें भी 49% तक निवेश की छूट दी है। सरकार ने कहा है कि इससे देश में व्यापार करना आसान होगा, जिससे निवेश बढ़ेगा और नौकरियां पैदा होंगी। पूरी रिपोर्ट सुनिए सर्वप्रिया सांगवान से।
नरेंद्र मोदी सरकार ने FDI यानी विदेशी कंपनियों के लिए निवेश के दरवाजे थोड़े और खोल दिए हैं। कैबिनेट ने FDI के नियमों को एक बार फिर आसान किया है। सबसे महत्वपूर्ण फैसला रिटेल क्षेत्र में लिया गया है। अब एकल ब्रांड रिटेल में 100% विदेशी निवेश बिना किसी सरकारी इजाजत के हो सकेगा। इससे पहले सिर्फ 49% निवेश ही बिना सरकारी इजाजत के किया जा सकता था, लेकिन FDI में ये छूट सिर्फ रिटेल में नहीं है। सरकारी विमान सेवा एयर इंडिया में भी अब विदेशी कंपनियां सरकारी इजाजत से 49% निवेश कर सकेंगी। पहले ये इजाजत बाकी सभी एयरलाइन के लिए थी सिवाय एयर इंडिया के। निर्माण सेवाएं या रियल एस्टेट बिजनेस में भी अब 100% विदेशी निवेश हो सकेगा, जिसके लिए सरकारी इजाजत की जरूरत नहीं होगी। इससे पहले 2015 में भी 15 क्षेत्रों में मोदी सरकार ने FDI के नियम आसान किए थे, लेकिन व्यापारी संगठन CIT का मानना है कि ये फैसला मल्टी ब्रांड में 100% निवेश की ओर बढ़ता कदम है, जिसका भारतीय जनता पार्टी UPA सरकार के दौरान विरोध करती थी। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भारतीय कहते हैं कि इस फैसले से नौकरियां कम होंगी और अगर एक भी व्यापारी का व्यापार बंद होता है तो 304 लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है।
कॉर्पोरेट बाहर से फंड ला सकते हैं, इनके फंड की कॉस्टिंग नेग्लिजिबल है। सेकेंडली, इनकी लॉस बेयरिंग कैपेसिटी है, क्योंकि ये मल्टीनेशनल्स में ऑपरेट करते हैं, तो कोई भी नए मार्केट में एंटर करने के लिए ये लॉस का बजट लेके आ सकती है। फिर इनके पास कैपेसिटी है एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, पब्लिसिटी, सब चीज की, तो ये पूरा पूरा व्यापार अपनी तरफ खींच ले जाएंगे। और ऐसी परिस्थिति में जो यहाँ के लोकल लोग है, जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है, ये एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट क्या अश्योरेंस देती है? गवर्नमेंट बताए ना क्या रिसर्च वर्क किया है? अगर ये इनको परमिशन दे रहे हैं तो 5 साल बाद इंडियन इकोनॉमी कहाँ रहेगी, 10 साल बाद कहाँ रहेगी, 25 साल बाद कहाँ रहेगी?
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। पार्टी के पूर्व महासचिव प्रकाश करात का कहना है कि UPA सरकार ने भी ये फैसला लेने की कोशिश की थी और तब भाजपा ने इसका विरोध किया था।
आई थिंक दिस इज बीइंग डन बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू डेवोस नेक्स्ट वीक एंड
मेरे ख्याल से ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री अगले हफ्ते दावोस जा रहे हैं और वो मल्टीनेशनल कंपनियों को, बड़े कॉरपोरेट को ये इशारा देना चाहते हैं कि जल्द ही भारत सभी सेक्टर में विदेशी निवेश के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोल देगा।
प्रकाश करात के शब्द। मार्क्सवादी पार्टी ही नहीं, संघ परिवार से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने भी इस फैसले की आलोचना की है।
ये थी सुप्रिया सांगवान की रिपोर्ट। जैसा कि आपने सुना, विपक्ष इस कदम का विरोध कर रहा है, पर संघ परिवार के भीतर से भी विरोध के सुर सुनाई पड़ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आनुषांगिक संगठन स्वदेशी जागरण मंच लगातार भारत में अंधाधुंध विदेशी निवेश का विरोध करता रहा है। अब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस ताज़ा फैसले पर मंच का क्या कहना है, ये जानने के लिए मैंने संपर्क किया स्वदेशी जागरण मंच के प्रवक्ता दीपक शर्मा से और पूछा कि मंत्रिमंडल के इस फैसले पर स्वदेशी जागरण मंच अब क्या करेगा।
स्वदेशी जागरण मंच का इस बारे में क्लियर स्टैंड है, लेकिन उससे पहले हम इस सरकार को इसका स्टैंड याद करवाना चाहेंगे। 12 दिसंबर 2011 को तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष ने राज्यसभा में क्या कहा था FDI के बारे में, और लोकसभा चुनाव में वर्तमान सत्ताधारी दल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में क्या कहा था, सरकार एक बार उसको अवलोकन करे।
थोड़ा हमारे श्रोताओं के लिए याद दिलाइए ना कि क्या कहा था भारतीय जनता पार्टी ने पहले जब वो विपक्ष में थी, और घोषणा पत्र में क्या कहा था।
राज्यसभा में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष श्रीमान अरुण जेटली जी ने FDI को लेकर एक अपना बयान दिया था जो ऑन रिकॉर्ड है, और उसमें उन्होंने यहाँ तक तर्क देते हुए कहा था कि यदि हम विदेशी कंपनियों को आने देते हैं तो किस प्रकार से वो हमारे किसानों का शोषण करती है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि अमूल जो है भारत में, वो अपने जो दुग्ध उत्पादक है उसको 70-72 पैसे देता है कुल एंड वैल्यू का दूध की, और जो विदेशी कंपनियां जो दूध में डील करती हैं और जो भारत में आने की कोशिश कर रही हैं, तो वो 30 पैसे 32 पैसे 35 पैसे ऐसा उन्होंने अमाउंट उदाहरण देके ये राज्यसभा में कहा था।
अब स्वदेशी जागरण मंच क्या चाहता है?
स्वदेशी जागरण मंच, ये दृढ़ मान्यता है हमारी कि एफडीआई से आधारित विकास मॉडल ये भारत ही नहीं विश्व में किसी भी विश्व में ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है। एफडीआई से भारत का विकास निश्चित रूप से नहीं होगा। एफडीआई से हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है रोजगार नष्ट होता है।
अगर निवेश नहीं होगा तो रोजगार कैसे बनेगा, कारखाने कैसे लगेंगे, व्यापार बढ़ेगा कैसे?
ये एटलीस्ट विदेशी निवेश ये विकल्प नहीं है। ये भारी मात्रा में जब रोजगार को बर्बाद करता है, सरकार दूसरी ऑप्शंस पे काम करे। दूसरी ऑप्शंस हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स हैं, बहुत जरूरी जो एरियाज हैं वहाँ पर विदेशी निवेश इस पे गहरी चर्चा करके, कहीं बहुत जरूरी है वहाँ केवल उस पे चर्चा करके लाया जा सकता है। लेकिन विदेशी निवेश एज ए पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट, इसके बारे में स्वदेशी जागरण मंच की स्पष्ट मान्यता है कि ये सही नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी जागरण मंच को कितनी गंभीरता से लेते होंगे, आपने सोचा है कभी?
हमारा विश्वास है कि जनाकांक्षाओं को वो जरूर गंभीरता से लेते हैं और हम जनता में इन मुद्दों पे जागरण करते हैं। संवेदनशील भी है प्रधानमंत्री और हमारे जो मुद्दे हमने उठाए हैं उनका असर भी दिखता है।
लेकिन बहुत सारे आलोचक ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री भी स्वयं सेवक हैं, स्वदेशी जागरण मंच के दीपक शर्मा भी स्वयं सेवक हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से सब जुड़े हुए हैं, ये नूरा कुश्ती इसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब आलोचना की बात आती है ताकि लोग ये कहें कि नहीं तो सरकार का तो विपक्ष है।
बहुत मजबूती से मैं आपके शब्द का खंडन करता हूँ और उस पर आपत्ति व्यक्त करता हूँ। ऐसा जनता नहीं सोचती। जनता की स्वदेशी के प्रति एक आस्था है, ये एक खूबसूरती है इंटरनल डेमोक्रेसी की।
ये थे स्वदेशी जागरण मंच के प्रवक्ता दीपक शर्मा।
खबर सच है
अगर बीबीसी पर है।
और अब चर्चा कश्मीर की। भारत प्रशासित कश्मीर में हाल के दिनों में बहुत कम उम्र के नौजवान सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं, जो अलगाववादी आंदोलन से प्रभावित होकर चरमपंथियों की कतारों में शामिल हो गए थे। माँ बाप भी इन बच्चों को वापस लाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी की नहीं सुनते। ऐसे ही एक किशोर 15 वर्ष के फरहान वानी घर छोड़कर चले गए थे, पर कल यानी मंगलवार को मुठभेड़ में उनकी मौत की खबर आई। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
14 जून 2017 का दिन था जब दक्षिणी कश्मीर के खड़ूनी इलाके के रहने वाले 15 वर्ष के फरहान वानी 11वीं क्लास की ट्यूशन क्लासेस लेने के लिए घर से निकल गए थे और जिसके बाद वो वापस नहीं लौटे। कुछ दिनों के बाद पुलिस ने फरहान के परिवार वालों को इस बात की सूचना दी कि उनका बेटा चरमपंथी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया है। फरहान के पिता गुलाम अहमद वानी ने 24 नवंबर को फेसबुक पर फरहान के लिए वापस लौटने का पैगाम पोस्ट किया, लेकिन फरहान फिर भी वापस नहीं लौटे। पिता ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, जब से आपने हमें छोड़ दिया मेरा शरीर मुझे धोखा देने लगा है। मैं इस दर्द से जूझ रहा हूं जो तुमने दिया और मुझे अभी भी यकीन है कि तुम वापस लौट आओगे। फरहान के भाई बुरहान अहमद ने बीबीसी के साथ बातचीत में भी इस बात को साझा किया कि उन्होंने फरहान के चरमपंथी बनने के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें वापस लाने के लिए मुहिम भी चलाई, लेकिन उनका भाई वापस नहीं लौटा। बल्कि सेना ने कल मंगलवार को इस बात की परिवार वालों को सूचना दी कि उनका बेटा मुठभेड़ में मारा गया है।
सर, हमने तो आपकी तरफ से बहुत कोशिश की लेकिन हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था, हम किसे बोलते। हमारे लिए सिर्फ ये सोशल मीडिया की वो बनी, हमने सोशल मीडिया को भी दिया, ईटी उर्दू पर भी दे दिया और इन जो कुछ पेजेस हो रहे फेसबुक पे उन्होंने भी दे दिया।
कश्मीर में कम उम्र के बच्चे चरमपंथ के रास्ते पर जाने को आखिर तरजीह क्यों दे रहे हैं और सामाजिक वैज्ञानिक चरमपथ के इस नए चेहरे को किस नज़र से देखते हैं, यही सवाल हमने पूछा कश्मीर यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमीन से।
ये किसी अचंभे की बात नहीं है क्योंकि जब भी कहीं कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन होती है तो वहाँ इस कॉन्फ्लिक्ट का रैमिफिकेशन ये है कि इससे नफ्सियाती तौर एक पर्सनैलिटी डिवियंस एक क्रिएट होती है, तो उस तनाजुर में जब हम देखते हैं तो उससे ये तो बिल्कुल एक रियलिटी बन जाती है कि ऐसी एज के बच्चे भी वल्नरेबल बन जाते हैं ऐसे हरकत।
वहीं पुलिस के रिटायर्ड आईजी और लेखक अली मोहम्मद वटाली कहते हैं कि जमीनी सतह पर कश्मीर समस्या के हल के लिए बातचीत का कोई दरवाजा खोला नहीं जा रहा है।
बातचीत नहीं हो रही है, मसला कश्मीर अपनी जगह खड़ा है। मसला कश्मीर को हल करने के लिए कोई इकदाम नहीं हो रहे हैं दोनों तरफ से।
बीते दिनों दक्षिणी कश्मीर के त्राल इलाके का रहने वाला 16 साल का फरदीन खांडे, जिसने अपने दो साथियों समेत पुलवामा जिला में CRPF के एक कैंप पर फिदायीन हमला किया था जिसमें वह अपने साथियों समेत मारा गया, ने हमले से पहले अपना एक 8 मिनट का वीडियो शूट किया था। पुलिस का दावा है कि वर्ष 2017 में 10 चरमपंथियों ने चरमपंथ का रास्ता छोड़कर अपने घरों को वापस लौट आए हैं। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
BBC हिंदी के कार्यक्रम दिन भर में आइए अब चर्चा करते हैं एक दिलचस्प मामले की, जिसमें दो लोगों ने कथित तौर पर खुद को इसलिए गिरफ्तार करवा लिया ताकि वो रांची जेल पहुंचकर वहां कैद राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की सेवा कर सकें। अब रांची पुलिस ने कहा है कि वाकई दोनों लोगों ने जानबूझकर खुद को गिरफ्तार करवाया। पुलिस ने केस दर्ज करवाने वाले युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट से अपील की है। रांची से रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
झारखंड पुलिस ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की कथित तौर पर सेवा करने के लिए खुद को गिरफ्तार करवाने के लिए दो लोगों ने खुद पर फर्जी मामले दर्ज करवाए। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि लक्ष्मण और मदन यादव जेल जाकर लालू प्रसाद की सेवा करना चाहते थे। रांची पुलिस ने एक दिन में अपनी जांच पूरी कर ली और दावा किया कि लक्ष्मण और मदन यादव के खिलाफ दर्ज मामला फर्जी है। मामले की जांच कर रहे सिटी DSP राजकुमार मेहता ने BBC को और जानकारी दी।
उसने कहा कि मेरे साथ मारपीट किया, हमारा पैसा दे दिया 10,000 रुपया। बट जब हम लोगों ने जांच शुरू किया तो जांच शुरू करने के बाद है कि हम लोग को ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला जिससे ये पुष्टि हो सके कि घटना घटित हुई है।
इधर जेल में बंद मदन यादव की पत्नी ने BBC से बातचीत में दावा किया कि सुमित के परिवार से उन लोगों का पट्टीदारी का झगड़ा है। इस कारण दोनों परिवारों के बीच पहले भी झगड़े हुए हैं। बीते 23 दिसंबर को भी इनके बीच मारपीट हुई थी। ऐसे में इस मामले को फर्जी कैसे कहा जा सकता है?
गैंग भल बा बाता बाते भल बा अपन हाथा फट फटी कर ले बा कुल के चोर के केस कर ले बा और का DM काल भल बा काल भी बात कर ले बा काल गोइल बा ये बात बतावल बा ये सब भल बा और का बताए।
बिहार के भोजपुर जिले के मूल निवासी सुमित और मदन यादव रांची में एक ही जगह रहते हैं। जब मैं वहां पहुंचा तो सुमित के घर पे ताला लगा था और उन्होंने अपना फोन भी बंद कर लिया है। इस बीच बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक अशोक चौधरी का कहना है कि लालू प्रसाद की सुरक्षा के मद्देनजर कड़ी चौकसी बरती जाती है। ऐसे में जेल में बंद कोई भी दूसरा कैदी उनसे नहीं मिल सकता। उन्होंने BBC से बातचीत में दावा किया कि मदन यादव और लक्ष्मण जेल में भले ही बंद हों लेकिन उनकी लालू प्रसाद से कोई मुलाकात नहीं हुई है।
वहाँ पर जो है कि मेरा 4 कांस्टेबल वहाँ लगा हुआ है गेट पर, और हम लोग का जो कन्विक्ट प्रिजनर है वो वहाँ काम कर रहा है, अंडर ट्रायल नहीं काम करता उसमें जेल मैनुअल। तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर किसी कीमत पर वो नहीं जाएगा और किसी भी दूसरे व्यक्ति को वहाँ जाने से सख्त ये नहीं है।
इधर चारा घोटाला के एक और मामले RC-68A में आज CBI की तरफ से बहस पूरी कर ली गई। अब आगामी 24 जनवरी को इस मामले में कोर्ट फैसला सुना सकता है। इस बीच देवघर ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में सजायाफ्ता होने के बाद लालू प्रसाद पेशी के सिलसिले में आज पहली बार कोर्ट आए। इससे पहले उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई थी। आज कोर्ट परिसर में उनके समर्थकों की भारी भीड़ थी, जिनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव भी मौजूद थे। रवि प्रकाश, BBC रांची।
पिछले दिनों ईरान के कई शहरों में सरकार विरोधी प्रदर्शन फूट पड़े और फिर इन प्रदर्शनों के खिलाफ सरकार समर्थक लोग भी सड़कों पर उतरे। फिर भी विरोधियों का सुर ज्यादा ऊंचा था। विरोध की आवाजें कहां और क्यों पैदा हुई और किसने इसका फायदा उठाने की कोशिश की, सुनिए दुनिया जहान में संदीप सोनी से।
दुनिया जहान।
पुल रा अरबिस्तान दद हर राही रा अमेरिका दश्त।
ये हैं ईरान के एक बड़े मौलवी।
करार बूद अज उताग अमेरिका दर हरात व अरबील चमचम।
जो राजधानी तेहरान में नए साल में जुमे की पहली नमाज के बाद अमेरिका और सऊदी अरब पर प्रदर्शनकारियों को हथियार मुहैया कराने का आरोप लगा रहे थे। ईरान के लगभग हर प्रमुख शहर में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनों के दौरान कुछ जगहों पर गोलियां चली, हिंसा और आगजनी हुई। सोशल मीडिया ने प्रदर्शनकारियों की आवाज को ईरान से बाहर निकलने में मदद की।
We don't have liberty in Iran. Women have to wear hijab and they cannot.
ईरान में हमें आजादी नहीं है, औरतों को हिजाब पहनना पड़ता है। भले ही आप मुसलमान हो या ना हो, हिजाब पहनना जरूरी है।
We can even walk to the street with our fiance, with our girlfriends.
हम अपनी मंगेतर या गर्लफ्रेंड के साथ सड़क पर नहीं निकल सकते। हम सिगरेट नहीं पी सकते, शराब नहीं पी सकते। हम इन हालात को बदलना चाहते हैं।
क्या सिर्फ इसी के लिए लोग ईरान में सड़कों पर उतरे, या इसके पीछे कुछ और वजह थी? पश्चिम एशिया मामलों के जानकार कमर आगा बताते हैं।
देखिए, कारण तो बहुत से थे, एक नहीं था। कुछ लोग नाराज थे, कीमतें बहुत बढ़ गई थी वहाँ पे खाने की, खास तौर से चीजों की। कुछ लोग रिजीम से ही नाराज थे, जिनको बाद में वो कह रहे थे कि फॉरेन पावर सपोर्ट करनी है। कुछ लोग वहाँ पे कंजर्वेटिव ग्रुप्स भी थे। गौरतलब बात यह है कि ये जितने डिमॉन्स्ट्रेशन हुए हैं, ये छोटे शहरों में हुए हैं, जो कि इनका बड़ा सपोर्ट बेस रहा है हमेशा से रिजीम का, ईरानी इस्लामिक रिजीम का, और वहीं ज्यादा ये अपोजिशन हुआ। इस तरह के कई वजूहात हो गई थी जो जुड़ गई, सब चीजें जुड़ गई। गुस्सा था, निकल रहा था, लोगों को उम्मीद थी कि सैंक्शन हटेंगे तो नौकरियां मिलेंगी, हालात और बेहतर होंगे, लेकिन हुआ ये कि और हालात बिगड़ गए। तो वो सडन आउटबर्स्ट था।
ईरान में लोगों का गुस्सा अचानक फूटा। खाने पीने की चीजों के बढ़े दामों ने आग में घी का काम किया और कई समूह इन प्रदर्शनों में शामिल होते चले गए। इनमें कुछ लोग राजनीतिक बदलाव की मांग कर रहे थे, और पहली बार ऐसा भी नजर आया जब लोगों ने राष्ट्रपति रूहानी के साथ साथ ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को भी हटाने की मांग की।
बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल इस निज़ाम ही के खिलाफ हैं। कुछ लोग चाहते हैं वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी भी हो, ऐसे भी लोग हैं। और कुछ लोग सुप्रीम लीडर को मानते ये है कि ये इस रिजीम में जितने सोशल चेंजेस जो नहीं आ पा रहे हैं, वो सुप्रीम लीडर के हैं, उनकी जो सख्त उनका रवैया है उसकी वजह से। रूहानी के खिलाफ इसलिए लगे कि इनसे बहुत उम्मीद थी। लोगों ने सोचा था कि सैंक्शन हटेंगे न्यूक्लियर डील के बाद, और उसके बाद हालात बेहतर होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आएगी, कि उनके पास कुछ पैसे आएंगे, माली हालात और इम्प्रूव होंगे। वो ऐसा हुआ नहीं। ये भी एक शिकायत है एक ग्रुप को वहाँ पे बहुत ज्यादा, कि ईरान ने काफी पैसा जो खर्चा किया है वो सीरिया, यमन और दूसरी जगहों पे, इराक में या अफगानिस्तान में, या इस्लाम के अंदर इत्तेहाद बढ़ाने के ऊपर। इस पे भी कुछ लोगों खामेनेई साहब जो सुप्रीम लीडर है उनसे नाराजगी थी।
Will they continue down the path of poverty, bloodshed and terror, or will the Iranian people return to the nation's proud roots?
सरकार विरोधी प्रदर्शन ईरान के अलग अलग शहरों में हो रहे थे, लेकिन इसकी गूंज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी सुनाई दे रही थी।
Oppressive regimes cannot endure forever, and the day will come when the people will face a choice.
दमनकारी शासन हमेशा कायम नहीं रह सकता, और वो दिन आएगा जब ईरान के लोगों के पास विकल्प होगा। सारी दुनिया देख रही है।
There is a long history of US bullying at the UN, but this is a preposterous example.
लेकिन सुरक्षा परिषद में अमेरिका का दांव उल्टा पड़ गया, और उसे रूस सहित कई देशों की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर सुरक्षा परिषद में चर्चा की अमेरिका की मांग पर ईरान के राजदूत ने ट्रंप और अमेरिका को जमकर कोसा।
The purely internal affairs of a nation, in this case, protests that the Iranian government has addressed with the utmost respect for the rights of the protesters.
विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से ईरान का अंदरूनी मामला है। अमेरिकी राष्ट्रपति समेत कई विदेशी ताकतें प्रदर्शनकारियों को भड़का रही हैं। इसके बावजूद ईरान की सरकार प्रदर्शनकारियों के अधिकार का सम्मान कर रही है और शांतिपूर्ण तरीके से निपट रही है। ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर सुरक्षा परिषद में चर्चा की जाए।
संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की दादागिरी का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन इस बार तो अमेरिका ने हद कर दी है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शनों का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाकर दखल देने की आखिर क्या जरूरत थी? अमेरिका को इससे क्या हासिल हुआ? पश्चिम एशिया मामलों के जानकार कमर आगा बताते हैं।
दो वजहें कही जाती हैं। एक तो ये कहा जाता है कि ये एक ایکیوز بولنے کے لیے تاکہ وہ جو دوبارہ سے امریکہ سیکشن لگانا چاہتے ہیں. ٹرمپ صاحب بذات کئی بار کہہ چکے ہیں کہ یہ ڈیل اچھی نہیں تھی, نیوکلیئر ڈیل یہ خراب ڈیل ہے اور اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے اور کچھ دنوں کے بعد پھر سرٹیفائی کرنا ہے سینکشنز کے لیے. بہت سے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ ایک ان کو ایکسکیوز ملا ہے دوبارہ سے سینکشن لگانے کا. ایران کے دشمن بھی بہت سے ہیں, ایران کے سمرتھک بھی بہت سے ہیں, دونوں ہیں. ایران ایک ریجنل پاور ہے, وہاں پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس کے چلتے ہوئے ان کے اس چھیتر میں کافی لوگ اس کے خلاف بھی ہیں, حکومتیں بھی کچھ خلاف ہیں, اور پہلے سے پرشین عرب رائیولری آج کی نہیں بہت پرانی ہے, اور اس میں سیکٹیرین بھی بہت سے ایشوز ہیں جڑے ہوئے.
ایران میں سرکار ویرودھی پردرشنوں کے دوران 20 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں. کئی پردرشنکاریوں کو حراست میں لیا گیا ہے, جن میں سے ایک پردرشنکاری کے بارے میں سرکار کا دعویٰ ہے کہ اس نے جیل میں ہی آتم ہتیا کر لی ہے.
مشکل اینها فقط اقتصادی نیست که مردم بیان تو خیابون بگن آقا پول میخوایم, نون میخوایم, آب میخوایم, چیزای دیگر هم دارن میگن.
راشٹرپتی حسن روحانی بھی کہہ رہے ہیں کہ پردرشنکاریوں کو صرف روٹی اور روزگار نہیں چاہیے, وہ اس سے کچھ زیادہ چاہتے ہیں. وہیں دوسری اور ایران کے سروچ دھارمک نیتا آیت اللہ علی خامنے ای اس فساد کے لیے ایران کے دشمنوں کو ذمہ دار بتا رہے ہیں. جانکار مانتے ہیں کہ موجودہ ویرودھ پردرشن ایران کے نیتریتو کے سامنے پچھلے 10 ورش میں سب سے بڑی چنوتی ہے. ویرودھ پردرشن یوں تو 9 سال پہلے بھی ہوئے تھے, لیکن اس بار ایران کے خلاف ایک مضبوط گٹھ بندھن کھڑا ہے جس میں امریکہ, اسرائیل اور سعودی عرب شامل ہیں. اس کی وجہ سے ایران کا نیتریتو مشکل میں پڑ گیا ہے. پردرشنکاریوں پر بہت ادھک بل پریوگ کیا گیا تو سیریا جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جہاں ودیشی طاقتیں سکریہ تھیں, اور یدی پردرشنکاریوں سے ایران بہت نرمی سے پیش آیا تو ادھک سے ادھک لوگ سڑکوں پر اترنا پسند کریں گے. اس کے بعد کیا ہوگا کہا نہیں جا سکتا.
امید ہے آپ کو دنیا جہان کا یہ انک پسند آیا ہوگا, اور اب ایک نظر کھیلوں کی دنیا پر.
کھیل سماچاروں کے ساتھ میں اندو پانڈے. شروعات کرتے ہیں کرکٹ سے. بھارتی کرکٹ ٹیم اس سال جون کے مہینے میں آئرلینڈ کا دورہ کرے گی. دورے میں کیول 2 T20 میچ کھیلے جائیں گے. یہ میچ 27 اور 28 جون کو ڈبلن میں ہوگا. ہم آپ کو بتا دیں کہ آخری بار بھارت نے سال 2007 میں آئرلینڈ کا دورہ کیا تھا. تب بھارت نے بیلفاسٹ میں ایک ون ڈے مقابلہ کھیلا تھا جو اس نے ڈکورتھ لوئس نیم سے 9 وکٹ سے جیتا تھا. اور ابھی فی الحال بھارتی کرکٹ ٹیم ساؤتھ افریقہ کے دورے پہ گئی ہوئی ہے. دوسرا ٹیسٹ میچ 13 جنوری یعنی کہ شنیوار کو ہوگا, لیکن اس سے پہلے آئی سی سی کی تازہ رینکنگ کے انوسار بھارت کے تیز گیند باز بھونیشور کمار نے آئی سی سی رینکنگ میں 8 پائیدانوں کی چھلانگ کے ساتھ 22واں ستھان حاصل کیا ہے. اس بار جو بھارتی کرکٹ ٹیم ساؤتھ افریقہ کے دورے پہ گئی ہے اس کے بارے میں کرکٹ ایکسپرٹ ایاز میمن کیا کہتے ہیں.
اگر آپ اس اسکواڈ میں دیکھیں, انڈین اسکواڈ میں, تو پہلی بار انڈین کرکٹ کے اتہاس میں 6 تیز گیند باز ہیں پانڈیا کو ملا کر, اور کیول 2 اسپنرز. تو ایک طرح سے بیلنس جو شفٹ ہو گیا ہے تیز گیند بازوں کی طرف, یہ بتاتا ہے کتنا پریورتن آیا ہے انڈین کرکٹ میں جہاں تک ٹیلنٹ کا سوال ہے اور انڈین کرکٹ کی سوچ میں.
اور بھارت ٹیسٹ ٹیم کی رینکنگ میں 124 انکوں کے ساتھ شیرش پر بنا ہوا ہے. اور اب بات کرتے ہیں مہیلا کرکٹ کی. دکشن افریقہ کے خلاف 3 ون ڈے میچوں کی سیریز کے لیے بھارتی مہیلا کرکٹ ٹیم کی گھوشنا ہو گئی ہے. بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ یعنی کہ بی سی سی آئی نے آج اس کی جانکاری دی. یہ سیریز آئی سی سی مہیلا چیمپئن شپ 2017-2020 کا حصہ ہے. بھارتی مہیلا کرکٹ ٹیم متالی راج کی کپتانی میں 5 سے 10 فروری تک دکشن افریقہ کے خلاف اس سیریز کو کھیلے گی. اس سے پہلے دونوں ٹیموں کے بیچ 2 فروری کو ابھیاس میچ بھی کھیلا جائے گا. تو کھیل سماچاروں میں فی الحال اتنا ہی.
مکھیہ سماچاروں کا اب سمے نہیں بچا, اس لیے ایک جھلک آپ کو دیتے ہیں بی بی سی ہندی ڈاٹ کام کے پہلے پنے پر, جہاں 4 خبریں ہیں. آخر کیا چل رہا ہے کم جونگ ان کے دماغ میں, تو یہ خبر پڑھنے کے لیے آئیے. ایک خبر ہے, چھرے سے گئی آنکھ لیکن حوصلہ نہیں ہاری انشا. یہ کشمیری ایک چھاترا کی خبر ہے جو امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے اور آپ کے موبائل پہ انٹرنیٹ چلتا ہے تو ضرور ان خبروں کو پڑھنے آئیے بی بی سی ہندی ڈاٹ کام پر. فی الحال دن بھر میں اتنا ہی. آج کے کارکرم کا تکنیکی پکش سنبھالا راجیش چوہان نے, اور اسے فیس بک کے ذریعے آپ تک پہنچانے میں مدد کی پرگیا مانو نے. اب سبھی ساتھیوں کی اور سے میں راجیش جوشی آپ سب سے انمتی چاہتا ہوں. کل صبح 6:30 بجے ہمارے ساتھی آپ سے ایک بار پھر سے مخاطب ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. نمسکار.